والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. ذرا امیجن کریں خود کو، تصور کی آنکھ سے خود کو اور اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو جنت میں سوچیں. اب دیکھیں، ہم نے کہیں بھی جانا ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے وہاں کے خواب دیکھتے ہیں، پھر ارادے کرتے ہیں، پھر تیاری کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. بالکل، کیا جنت میں ہم بغیر ارادے کے گزر جائیں گے، بغیر پلاننگ کے گزر جائیں گے؟ تو آج کی چھوٹی سی ٹپ نوٹ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ جنت کو ڈسکس کریں، خاص طور پہ افطاری کے وقت میں سب بیٹھے. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں، بیٹا جنت میں میرا ایسا گھر ہوگا، تمہیں کیسا لینا ہے، تم کیا کرو گے، اس طرح سے ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں جنت کا شوق ابھاریں. آپ جب شوق ابھاریں گے نا، پھر اس کو پانے کے راستے بھی آسان ہوں گے. ہمارا بعض دفعہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم شوق ابھارے بغیر جنت کی مشکلیں بتانے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں حکمت کے ساتھ ان معصوم بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑی اہم آیت ہے امانتوں کو ادا کرنے کے بارے میں، آئیے دیکھتے ہیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. اسلام میں امانت کی بڑی اہمیت ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں ہے. تو کبھی بھی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کو یا کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے اس کو ادا کرنے میں سستی نہ کریں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص جس نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہوگی تو اس کی اس چیز کو جہنم کی تہہ میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا جاؤ لے کر آؤ. وہ جہنم کی ساری وادیاں یا سب مرحلے طے کرتا ہوا نیچے جائے گا اور ادھر سے اس چیز کو اٹھا کر لائے گا. ابھی جب صرف کنارے پہ پہنچے گا تو وہ چیز اس کے ہاتھ سے پھسل کر دوبارہ جہنم میں گر جائے گی، اور اس طرح پھر وہ اس کو دوبارہ لے جانے کی کوششوں میں ہوگا. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہر ذمہ داری کو امانت سمجھ کر نبھانے والا بنائے. یہ جگہیں، یہ چیزیں، یہ زمین ہمارے لیے امانت ہے. کبھی کسی کی بھی کوئی جگہ استعمال کریں، کسی کے گھر جائیں، خراب نہ کریں، مس یوز نہ کریں کسی کی چیزوں کو. ایک کی جگہ دو ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنا، ایک پلیٹ کی جگہ دوسرا کرنا. خاص طور پہ بعض دفعہ تو مسجدوں میں بھی افطاریوں کے دوران لوگ بہت زیادہ چیزوں کو ضائع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کسی کے بھی حق میں نہ پکڑنا، اور ہم جس طرح اپنی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ویسے ہی یہاں بھی رہ کر، ایون اس ہال میں بھی آپ سب ماشاءاللہ آتے ہیں، تو کل ان کو یہ نہ کہنا پڑے کہ یہ قرآن پڑھنے آئے تھے اور ہمارے ٹیبلز پہ لکھ کے چلے گئے، اور ہماری کرسیوں میں سوراخ کر کے چلے گئے، اور ٹوائلٹس کو کلاک کر کے چلے گئے. کیونکہ یہ ہماری نہیں، اس قرآن کی بے عزتی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع یعنی جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. ان سے تعرض مت کرو اور انہیں سمجھاؤ، اور ایسی نصیحت کرو جن کے دلوں میں اتر جائے. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس نے خدا بندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا, تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. لیکن ایسا ہوا نہیں. فلا وربک لا یؤمنون, نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اہم آیت ہے, اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا, تمہارے رب کی قسم, یعنی یہ قرآن پاک کا واحد مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہونے کی قسم کھائی ہے اپنے لیے. کیا کس بات پہ قسم ہے؟ فلا یؤمنون, یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کبھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں, بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے, حالانکہ جو نصیحت ان کو کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا, اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. یہاں رکوں گی. یہ سب آیا جو میں نے اکٹھی پڑھی ان کے پیچھے واقعات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ کیا ہے کہ دو لوگوں کا جھگڑا ہوا, ایک مسلمان تھا ایک یہودی تھا. قصور مسلمان کا تھا. اب جھگڑا کیا تھا اس کو چھوڑ دیں, زمین کا تھا کچھ پانی پلانے کا. اس وقت جو میں آپ کو اس میں سے ایک جیم دینا چاہتی ہوں اس پہ فوکس کیجئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پہلے سے یہود رہتے تھے, کفار مکہ بھی رہتے تھے, جیسے کفار مدینہ یعنی جو وہاں کے لوکل لوگ تھے. اب جب آپ اس ملک میں آئے تو آپ مسلمان کی حیثیت سے آئے تھے, آپ وہاں کے حکمران تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ سب کو کہہ دیں کہ چونکہ اب ہمارا ملک ہے, آپ ہمارے انڈر ہیں, آپ جو چاہیں گے آپ کو اسلام کے مطابق ہی سہنا پڑے گا. لیکن ریلیجس فریڈم, مذہبی آزادی کا جو نعرہ آج دنیا میں لگایا جاتا ہے, اس کا عملی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آپ نے دو عدالتیں بنوائیں, ایک عدالت کعب بن اشرف, اس کے بڑے بنے جو یہود کے معاملات ڈیل کرتے تھے, اور دوسری عدالت مسلمانوں کی تھی جس میں مسلمانوں کے مقدمے جاتے اور اس کے لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نہ ہوتے یا آپ کے نامینیٹ کرنے پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں فیصلے کرتے. عام حالات میں تو ایسے ہی ہوتا کہ مسلمان اپنے مقدمے ادھر لے جاتے اور یہود اپنے دوسری عدالت میں لے جاتے. آج تک یہ سنت پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی گئی. یہاں ایک ہلکا سا نقطہ سوچ دینے کا ضرور بولوں گی, ہم نان مسلم ملکوں میں جاتے ہیں, رہیں جائیں, اگر ہم سب مسلم یہ حق لینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو یہ مثالیں دے کر ان ملکوں میں کم از کم وہاں رہنے والے مسلمز کے میٹرز, ان کی وراثت, ان کی وصیت, ان کے بچے, طلاق, ڈائیورس اور شادی بیاہ کو کم از کم ہم اپنے لیے اسلامک کروا سکتے ہیں. لیکن یہ کب ہوگا جب ہم اس کو کم از کم اپنے ملکوں میں تو کروا چکے ہوں. خیر, واقعہ بہت اہم ہے. یہودی اور مسلمان کا جھگڑا تھا, وہ دونوں مل کر اس مقدمے کا فیصلہ کرانے کے لیے آئے. یہودی کو پتا تھا کہ میں اپنی عدالت میں اگر گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو وہاں کے بڑے وکیل یا لائرز ہیں وہ رشوت لے کر میرے خلاف فیصلہ دے دیں اور مسلمان کے حق میں دے دیں. لیکن اس کو اتنا یقین تھا کہ مسلمانوں کی عدالت میں مجھے عدل اور انصاف ملے گا. اللہ کرے آج بھی ہماری یہی ریپوٹیشن ہو. کہا کہ اب ایک یہودی ایک مسلمان ہے, کدھر جائیں؟ تو یہودی نے کہا نہیں نہیں, تمہاری عدالت میں چلتے ہیں. یہ ہے گواہی جو دشمن بھی دے. مسلمان چونکہ منافق تھا, اس کے دل میں شک تھا. اس کا دل کیا تھا کہ ہم چلتے ہیں کدھر؟ یہود کی عدالت میں. قصہ مختصر, اس کے کہنے پر مسلمانوں کی عدالت میں آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ معاملہ تھا, آپ کے پاس گئے. آپ نے حالات کو دیکھ کر, شواہد کو دیکھ کر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا, کیونکہ وہ حق پہ تھا. ہمارے نبی نے جو دنیا میں اسلام پھیلایا نا, یہ عدل, انصاف اور محبت سے پھیلایا. جب آپ نے فیصلہ اس کے حق میں دیا تو مسلمان کو یہ برا لگا. خیر, ادھر سے نکلے, وہ کہنے لگا دیکھو اللہ کے نبی نے تو فیصلہ کر ہی دیا, چلو ذرا عمر سے بھی رائے لے لیتے ہیں. اس کے دل میں کیا تھا کہ حضرت عمر کے دل میں اسلام کی بڑی غیرت ہے اور غیر مسلموں سے بڑا بغض ہے, تو ہو سکتا ہے صرف اس کے یہودی ہونے کی وجہ سے وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں. خیر, وہاں سے اٹھے, حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے. وہاں جا کے جب اس نے مقدمہ پیش کیا, اس شخص نے اپنی سچائی پیش کرنے کے لیے جو مقدمہ پیش کیا, اس کے آخر میں اس یہودی نے ایک جملہ بتا دیا, ویسے عمر صاحب ہم آپ کے پاس آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے فیصلہ لے آئے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں دے دیا. اتنا جملہ سننا تھا, हजरत उमर ने कहा अच्छा ठहरो मैं आता हूं। अंदर गए, तलवार लाए, वो मुसलमान जो मुकदमा लेकर आया उसकी गर्दन काट दी। कहा जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मंजूर नहीं उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। शख्स मार के, अब एक देखे ना पुलिस मैन ने कह लीजिए कि किसी को कत्ल कर दिया, उस शख्स के जो घर वाले थे वो मुकदमा लेकर उमर का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। अल्लाह के नबी, आपके बंदे ने हमारा बंदा मार दिया। कहा क्यों क्या हुआ? ये मामला खोला, उमर को बुलाया गया, कटहरे में खड़े हो गए उमर। क्या उमर आपने ये क्या किया? अल्लाह के नबी, जिस शख्स को आपका फैसला मंजूर नहीं है वो मुसलमान नहीं हो सकता, मैंने इसको मुर्तद समझ के कत्ल किया। अब मामला परेशानी का। आप देखें ना कि अल्लाह के नबी खुद से कुछ नहीं कहते, अल्लाह ने यह आयतें नाजिल कर दी, फला व रब्बी कला यो मेनू ना हत्ता यो हक के मुंह कफीमा शजर बेनाम, तेरे रब की कसम ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने बाहमी इख्तलाफात में तुमको फैसला करने वाले ना मान जाए। इससे बढ़कर नबी की तबाह कोई करेगा? तो हमारे आज के इस पारे की शख्सियत है, प्यार मोहब्बत से नाम लो तो वो उमर फारूक है, क्योंकि हमने हर पारे में से किसी एक रोल मॉडल को चूज करना है। हजरत उमर कौन थे? इमाम अदल थे और इमाम हुर्रियत थे, खलीफा राशिद थे, फातह अरबो अजम थे, दामाद अली भी थे और खलीफा दोम भी थे और अमीरुल मोमिनीन का लकब था। उमर फारूक को अबकरी शख्सियत कहा जाता है, यानी जिन्नाती सिफत। आज भी तारीख इनके नाम से कांपती है। कैसरो किसरा के फातह, अबू बकर के बाद आप खलीफा बनने वाले। उमर को अगर आप ये टाइटल दे दीजिए कि उमर बिन खिताब थे, लकब फारूक था। हक और बातिल का जितना खूबसूरत फर्क उमर जानते थे कोई नहीं जानता था। कुनियत इनकी अबू हफ्स था, हजरत हफ्सा के बाप थे। इनकी बेटी को ये फख्र हासिल है कि वो महाते मोमिनीन में थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक के दामाद भी थे। किसी को ये सुनकर कितना अजीब लगता है, नवी पुश्त से नबी सल्लम के साथ इनका हसब नसब जब मिल जाता है। वाकया फील के 13 साल बाद पैदा हुए। अब जरा सा लाइफ मैनेजमेंट पे इसको सोचिएगा, जिस वजह से मैंने आज के आपके लिए शख्सियत चूज की है उसकी वजह यह है कि जिंदगियां देखी इनकी कितनी थी, इन लोगों की जिंदगियों में बरकत क्यों थी इतनी, क्या कुछ कर गए। 13 बरस बाद पैदा हुए तो नबी सल्लम से कितने छोटे थे? तकरीबन 12 साल छोटे थे। और देखिए आपके बाद तकरीबन उतना ही जिंदा रहे और उसके बाद दुनिया से गए और कबूले इस्लाम 6ठे साल नबूवत के कबूल किया 33 साल की उम्र में, यानी आधी से ज्यादा जिंदगी कुफर में गुजारी है। इसके बावजूद आप देखिए कि अल्लाह ने इनसे क्या काम लिया। जिस्मानी तौर पे स्ट्रांग थे, सुर्ख व सफेद, माइल बसुर्खी और गोश्त कम था, कद लंबा था, नबी सल्लम की बीवी के बाप थे और इसी तरह से हजरत अली की बेटी जो थी उम्मे कुलसुम उनसे भी इनका निकाह हो चुका था। यानी इनकी मैं सारी बातों पे डिटेल नहीं दूंगी, सिर्फ आपको इनकी वो चंद बातें सुना देती हूँ जिसकी वजह से मैंने और आपने इनको रोल मॉडल मानना है कि आखिर इनमें क्या चीज थी। मक्का में 7 साल और 10 साल मदीना में नबी सल्लम के साथ रहे, सिर्फ 17 साल। 27 गजवात में शरीक हुए, कोई एक जंग भी ऐसी नहीं थी जिसमें नहीं है। और खाना काबा में सबसे पहले इस्लाम का नाम आपने बुलंद किया। लोग कहते कि इस्लाम बंद कमरों में था इससे पहले कि उमर मुसलमान हुए। इन्होंने इतनी जुरत के साथ अपने इस्लाम का इजहार किया था कि अबू जहल कांप के रह गया था। इन्होंने कहा था हाँ मैं मुसलमान हो गया, बोलो क्या करते हो, लेकिन वो घबरा के पीछे हो गया। आप कहिए कि हजरत उमर की फरमाइश पे कुरान पाक में 27 आयतें नाजिल हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। और इसी तरह अली युस्किराहुल दीन का वादा उमर के दौर में पूरा हुआ कि ए नबी अल्लाह ताला आपके दीन को गालिब करेगा। और इसी तरह गुलिबत रोम, रोम गालिब आ गया, ये बेशन गोई भी हजरत उमर के बारे में पूरी हुई। नबी सल्लम ने हजरत उमर के बारे में क्या फरमाया? फरमाया जिस रास्ते से उमर गुजरते हैं शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। बुखारी और मुस्लिम में ये आता है जन्नत में उमर का लकब बड़ा महल है और उमर की जुबान पर अल्लाह ने हक को जारी कर दिया। बैहकी की रिवायत है। मिशकात की रिवायत है, आपने फरमाया मेरे बाद अबू बकर और उमर की इक्तदा करना। तिरमिजी की रिवायत है, आपने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। आपने फरमाया मेरे आसमानों में 2 वजीर यानी जिब्राइल और मीकाईल हैं और जमीन पर 2 अबू बकर और उमर हैं। एक मौके पे अबू बकर सिद्दीक एक तरफ थे और दूसरी तरफ उमर थे और आप दोनों के कंधों पे हाथ रख के कहने लगे हम तीनों इसी तरह कयामत के दिन उठेंगे। आज भी देखिए एक तरफ अबू बकर की कब्र है और दूसरी तरफ उमर की कब्र है। हजरत आयशा ने ये जगह अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन जब हजरत उमर शहीद किए गए और जख्मों से गिरे तो हजरत आयशा को पैगाम भेजा कि ऐ मोमिनों की माँ, मुझे ये इजाजत दे कि मैं अल्लाह के नबी के पहलू में दफन हो सकूं। रश करते थे, कहते थे अबू बकर की कब्र में नबी के साथ है तो मेरी दूर क्यों हो। फिर अल्लाह ने कहा कि जगह तो ये मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन मैं अपनी जात पे आपको प्रेफरेंस देती हूँ, और आज भी उमर वहां दफन है। क्या किया था? अब जरा सा सुनिए, कितने साल की जिंदगी है? 30 साल। मैं और आप अपनी उम्रों का हिसाब लगाएं, ओनली 30 ईयर्स जो इनको इस्लाम की हालत में मिले, इसमें क्या कुछ किया? अबू बकर के बाद 10 साल 6 महीने 10 दिन तक हुकूमत की, 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लामी खिलाफत नाफिज कर दी। आपके दौर में 3600 इलाके फतह हुए, आपके दौर में 900 जामे मस्जिदें और 4000 आम मस्जिदें तामीर हुई। कैसरो किसरा उस दौर की बड़ी सुपर पावर्स का खात्मा आपके दौर में हुआ। आपके अहद में अदालत के ऐसे बेमिसाल फैसले चश्मे फलक ने देखे जिनका चर्चा चारों तरफ है, यानी इनके अदल और इंसाफ के फैसलों पे इतनी मोटी बुक है। मेरा दिल किया था वाकया सुनाऊं, फिर वक्त नहीं है। मैंने आज फिर आपके लिए नियत की कि एक हमने सेमिनार किया था खुलफाए राशिदीन पे, लंदन में हुआ था आज से शायद 6-7 महीने पहले या साल हो गया होगा। उसमें से मैं ख्वाहिश करूंगी कि आपको हजरत उमर के बारे में आज कुछ भेजा जाए। यंग बच्चों के साथ बैठ के सुनिए, आज हमें अपने बच्चों को ये मुस्लिम हीरोज दिखाने की जरूरत है। और खास तौर पे आप देखिए कि इनके दौर में इराक, ईरान, रोम, तुर्किस्तान और दूसरे अजमी इलाकों पर इस्लाम का झंडा लहराया था। हजरत उमर की तारीफ और उनकी शख्सियत के बारे में मुस्लिम से ज्यादा गैर मुस्लिम्स ने लिखा है और इनकी तारीफों के गुण गाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इसकी खुशखबरियां मिली गई। और हजरत उमर के बारे में इब्ने मसूद कहते हैं कि इल्म के 10 हिस्सों में से एक हिस्सा सारी उम्मत को दिया गया और 9 हिस्से उमर को दिए गए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप सिर्फ हजरत उमर के वो 10 साल जिसमें ये खलीफा बने थे, इनके फैसले, इनके इज्तेहादात, इनके इंतजामी उमूर, कैसे टीम मैनेजमेंट की, कैसे लोगों से काम किया, आप करके देखें, इतनी मोटी बुक बनेगी, मोटी मोटी जिल्दें तैयार हैं सिर्फ हजरत उमर की फैसलों को देकर। रिवायत में आता है कि जब इन्होंने कोई जंगी फैसला या कोई हुकूमत का इंतजामी उमूर का फैसला देना होता था, वजू करके नफलों की नीयत में जायनमाज पर खड़े हो जाते थे, कहते थे अल्लाह मैं तेरे आगे आ गया हूँ, अब मेरे दिल में इल्का कर। आपने फरमाया हर उम्मत का एक साहिब इल्हाम शख्स होता है और मेरी उम्मत का शख्स वो उमर है। आपने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर कोई होता तो वो उमर होते। हजरत अली इनके बारे में कहा करते थे, जब सालेहीन का जिक्र करो तो उमर को जरूर याद कर लिया करो। खुद से पूछते हैं आज हमारे बच्चे और हम कितना को इन लोगों की जिंदगियों को पढ़ते हैं। आज दुनियावी हीरोज, नाचने गाने वाले, फन और एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ खेलने खिलाने वाले लोग हमारे बच्चों के हीरोज हैं, लेकिन असल ये थे जिन्होंने उम्मत की हालत बदलनी है। अगर मैं और आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि आने वाला दौर इस्लाम का दौर हो, तो हमें इन शख्सियात को खोल के लाना पड़ेगा। हजरत उस्मान इनके बारे में कहा करते थे, अल्लाह उमर की कब्र को रोशन करते, तरावीह का इंतजाम करके इन्होंने मस्जिदों को मुजयन कर दिया। ये आज रात जितनी मस्जिदों में तरावियां होनी है, ये हजरत उमर का एस्टेब्लिश सिस्टम है। नबी सल्लम के दौर में इस तरह से नहीं था। ये किस तरीके से अल्लाह ने इन लोगों से बात की, तो याद रखिए बातें और बहुत कुछ हैं, लेकिन जिंदगी वही उनकी थी जो मेरी और आपकी है। ये इतना कुछ कैसे कर गए? इनके पास इतने रिसोर्सेज थे जो मेरे पास हैं? वजह यह कि इन्होंने अपनी जिंदगी और अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया। आपने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि जिन्नाती और इंसानी शयातीन उमर से दूर भाग रहे हैं। और अल्लाह के नबी की जिंदगी में ख्वाब देखा गया था जिसमें उमर को एक लंबी सी कमीज पहने हुए देखा, तो आपने फरमाया कि ये इल्म है, उमर को दिया जाएगा, दूध पीते हुए दिखाया गया। एक दफा ख्वाब में आपने जन्नत का महल देखा, सोने का, पूछा ये किसका महल है, तो ख्वाब में आपको बताया गया कि ये उमर बिन खत्ताब का महल है। आपने फरमाया कि उमर मैं तेरे महल के पास जा रहा था, वहां एक औरत को देखा तो मैं पीछे पलट आया, मुझे तेरी गैरत आ गई कि तू बुरा ना माने। कहा अल्लाह के नबी मैं आप जैसे पे गैरत करूंगा। याद रखिए ये जो करके गए अल्लाह ने आज तक इनकी कदर की है। जरूरत है इस बात की कि मैं और आप अपने आप को इस पर लें। आगे एक आयत आ रही है जिसमें सालेहीन नबियों और अच्छे लोगों का जिक्र है, तो उस पर भी एक हदीस है। एक दफा अल्लाह के नबी जबले उहद पर गए तो आपके साथ अबू बकर भी थे, उमर भी थे और उस्मान भी थे। आपने फरमाया उहद ठहर जा, इसलिए कि इस वक्त तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। यानी जिंदगी में खुशखबरी की बात आ गई तो इन लोगों की जिंदगियों को पढ़िए। अल्लाह के नबी से बेलौस प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लम ने एक मौके पे पूछा कि उमर तुम मुझसे कितना प्यार करता है, कहा दुनिया की हर चीज से ज्यादा, कहा अपनी जान से ज्यादा, कहा नहीं अपनी जान से ज्यादा तो नहीं करता, वो सच बोलते थे, हमारी तरह झूठी सच्ची शेर नहीं पढ़ते थे। कहा अच्छा, आपने उनके सीने पे हाथ रखा, बस उस हाथ की तासीर थी। उमर ने कहा अल्लाह के नबी आप तो मुझे मेरी जान से भी आप ज्यादा प्यारे हैं, मैं आपको अपनी जान भी दे सकता हूँ। अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर से बे इंतहा मोहब्बत की, और हज़रत उमर की नबी सल्लम से इतनी मोहब्बत थी कि आपकी वफ़ात के बाद आपका दौर याद करते रोते 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 गिरकर बेहोश हो जाते। और उमर वो थे जिन्होंने अपनी खिलाफत के दौर में अपनी कमर के ऊपर सामान उठाया, बोझ उठा उठा के यतीमों और बेवाओं के घरों में देते थे। जब बाद में उमर के जिस्म को देखा गया तो उनकी कमर पे चंडियां पड़ी हुई थी, कहा ये बोझ उठा उठा के गरीबों का। कहा करते थे अगर दरियाए फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भूखा रह गया तो उमर तुझसे पूछा जाएगा। और एक औरत जो रात को अब शेर पढ़ रही थी उसके अशआर सुन के उमर ने कानून बदल दिया था कि आज के बाद कोई शादीशुदा मर्द 4 महीने से ज्यादा दूर ना रहे। आप देखिए ये क्या शख्सियात थी, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इनके नक्शे कदम पे चलाए। आज जाके जरूर सोचिए सुनिए, और किसी ना किसी जगह आपके पास घरों में बुक्स भी होंगी, मैं नहीं कहती जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आप सिर्फ इसी पे इक्तफा करें, लेकिन आप इनको पढ़ें, आपको यकीन करें अपनी जिंदगी के अंदर एक हरकत महसूस होगी। हमें तो जरा सा काम करना पड़े हम परेशान हैं, हमें 5 नमाजें मस्जिद में जाके पढ़नी पड़े हमें रहम आने लगता है, हमें कुरान के लिए घर से निकलना पड़े मुश्किल लगता है। ये अमली मैदानों में कूद गए, वजह क्या थी कि इनको ये पता था कि हमारे पास जिंदगी छोटी सी है, बहुत थोड़ी है। दो तीन अकवाल हजरत उमर के सुना के आगे चलती हूँ। कहते हैं अगर सब्र और शुक्र दो सवारियां होती तो मैं परवाह ना करता कि किस पर सवार हूं, यानी मैं या सब्र करूंगा या शुक्र करूंगा। जो शख्स राज छुपाता है इसका राज इसके हाथ में है, यानी अपने सीक्रेट्स ऐसे नहीं शेयर करने चाहिए। अल्लाह की पनाह, आज तो रात को गुनाह करें सारी दुनिया में सुबह फैलाया होता। कहते हैं अपने राजों को छुपा के रखो, लोगों की फिक्र में अपने आप को ना भूल जाओ। मुझे सवाल करने वाले के सवाल से इसकी अकल का अंदाजा हो जाता है कि वो कितने पानी में है। दुनिया थोड़ी सी लो तब आजादाना बसर कर सकोगे। आदमी के नमाज रोजे पर मत जाओ मगर उसके मामलात उसकी मामलों की दुरुस्तगी और उसकी अकल को देखो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नस्लों में उम्र पैदा करें। अल्लाह हमारे बच्चों को उम्र बनाए। आप देखिए नाम की हद तक तो आज बहुत आम लफ्ज़ है उम्र, लेकिन अपने बच्चों के अंदर हजरत उमर की खूबियां पेश करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें बेहतरीन तरीके से उनकी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। फिर इसके बाद अगली आयतों में अब खुशखबरी है, वमन युति अल्लाह व रसूल फौलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबीय्यीन वस्सिद्दीकीन। जो लोग अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे, दुआ करें अल्लाह हमें ऐसा कर दे, वो इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी अम्बियार सिद्दीकीन और शुहदार सालेहीन। हजरत उमर का दर्जा किधर आता है इनमें? शुहदा में, शहीद हुए थे। लोग इनसे हसद करते थे, जब लोगों ने देखा कि ये बहुत बेलबाक है और हक के मामले में किसी से नहीं दबते, तबू फिरोज लोलो ने इनको नमाज की हालत में खंजर मारा था। नमाज नहीं तोड़ी, खून बहता रहा, नमाज पढ़ते रहे, सलाम फेरी उसके बाद गिरे, फिर बस एक आधा दिन जिंदा रहे। उसी के दौरान फिर हजरत उस्मान को नॉमिनेट किया गया और इतना प्यारा एक हीरो इस दुनिया से चला गया। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी इतनी खूबियां ले लोगों के भी लोग दुश्मन बन जाते हैं, लोग इनके भी बुरे नाम लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कैसे अच्छे हैं ये रफीक जो किसी को मुयस्सर आए। ये हकीकी फजल है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है, और हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ही का इल्म काफी है। अपने लिए हमेशा दुआ किया करें अल्लाह नेकों का साथ दे। आप देखिए ये आयत हमने सूरह फातिहा की तफसीर में पढ़ी थी कि हम पढ़ते हैं ना सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, तो ये इनाम वाले लोग वही थे जो अपनी जिंदगियों का बेहतरीन फायदा उठा गए। पहले लोग कहा करते थे अल्लाह हमें कब्र भी नेक के साथ देना, अल्लाह नेकों का साथ देना। तो जिंदगी में नेक लोगों को ढूंढिए, जिंदगी में ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो आपके अंदर ईमान की हरारत पैदा करें। देखिए आप यहाँ आके बैठे हैं ना, जो मैं बोल रही हूँ आप घर से भी सुन सकते हैं, और जो यहाँ नहीं बेचारे आ सकते या दुनिया के दूसरे हिस्सों में वो बाहर से सुन रहे हैं, और हरेक अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिसाब से फायदा भी ले रहा है। लेकिन क्या आपको यहाँ बैठकर एनर्जी फील होती? क्या ये माहौल आपका साथ दे रहा है? क्या आपका घर से सुबह उठ के भाग दौड़ करके इधर आना आपको ईमान देता है? ये दौलत जब मिलती है तो इसकी कदर कर लें, जिसको ये दौलत मिल गई, उसने इसको थाम लिया, वो आगे दूसरों को देने के काबिल होगा। और जो सिर्फ अपने लिए कोई काम करना चाहे, उसके लिए मैदान खोला, वो तो बिस्तर पे लेट के भी सुन ले, सो भी जाए, बाद में सुन ले, कभी भी सुन ले। तो जितनी एफर्ट करेंगे ना, अल्लाह आपको उतना ही मोल देगा। मैंने तो हजरत उमर की जिंदगी से यही सीखा है कि अल्लाह ने इनको इनकी कोशिशों से ज्यादा दिया। आज मैं और आप भी थोड़ी सी कोशिश करें, दुआ करें, अल्लाह तूने उमर से 33 साल में इतना कुछ करा लिया, मुझसे भी करा। अल्लाह ताला वो तो इतनी जल्दी इतना कुछ करके मुझसे भी करा। बातें किया करें, अल्लाह से लाड किया करें, और आप देखिएगा कि अल्लाह ताला आपके लिए वो नेकियों के दरवाजे खोलेगा जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अब इसके बाद मुसलमानों को अमली तैयारियों का हुक्म दिया गया, कैसे आइए देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू खिज़रकुम फनफिरू सुबातन विनफिरू जमीअ। ए लोगों, जो ईमान लाए हो, मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहो। मुसलमान सुस्त नहीं होता, हर चीज के लिए तैयार होता है। फिर जैसा मौका हो, अलग अलग दस्तों की शक्ल में निकलो या इकट्ठे होकर। हाँ, तुम में कोई आदमी ऐसा भी है जो लड़ाई से जी चुराता है। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहता है, अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं इन लोगों के साथ ना गया। और अगर अल्लाह की तरफ से तुम पर फजल हो तो इस तरह कहता है, गोया तुम्हारे और इसके दरमियान मोहब्बत का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। और काश के मैं भी इन लोगों के साथ होता तो बड़ा काम बन जाता। ऐसे लोगों को मालूम हो कि अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए। इन लोगों को जो आखरत के बदले दुनिया की जिंदगी को फरोख्त कर दें, फिर जो अल्लाह की राह में लड़ेगा और मारा जाएगा या गालिब रहेगा, इसे जरूर हम अजर अजीम अता करेंगे। आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो, जो कमजोर पाकर दबा लिए गए और फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमको इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और हमारी तरफ से अपना कोई हामी और मददगार पैदा कर दे। जिन लोगों ने ईमान का रास्ता अख्तियार किया वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। दुआ कीजिए हमें अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने वालों में शामिल कर दे। और जिन्होंने कुफर का रास्ता अख्तियार किया वो तागूत की राह में लड़ते हैं। बस शैतान के साथियों से लड़ो, और यकीन जानो कि शैतान की चालें हकीकत में नहायत कमजोर है। यहाँ पे आज के हमारे पारे का टाइम वेस्टर है। अगर आप आयत का नंबर नोट कर लें, आयत नंबर 72 में आपने एक किरदार का नाम पढ़ा कि जिसका हाल क्या है, वइन्ना मिनकुम लमन लयुबत्तियन्ना। लयुबत्तियन्ना क्या है? जो सुस्ती करता है। इमाम इब्ने कईम रहमहुल्लाह का आपने नाम सुना होगा, उनका एक कॉल आपके साथ शेयर करती हूँ। कहते हैं कि शैतान आदमी के नफ्स को सूंघता रहता है। यानी एक बड़ी अजीब सी हैरत अंगेज किस्म की चाल है शैतान की लोगों को परखने की। करता क्या है? आदमी के नफ्स को सूंघता है, फिर वो दो में से एक चीज वहां पाता है। पहली चीज क्या होती है? अगर किसी बंदे को हक की तरफ बढ़ने वाला, पेशकदमी करने वाला, इनिशिएटिव यानी बहादुरी के साथ नेकी के कामों में आगे से आगे बढ़ने वाला महसूस करे तो एक हालत होती है, और दूसरा वो शख्स उसको दिखता है जो नेकियों से पीछे रहने वाला, बाज रहने वाला और कमजोर होने वाला है। तो फरमाया वो इन दोनों को मुख्तलिफ तरीके से डील करता है। क्या करता है? अगर वो किसी बंदे को नेकियों से पीछे रहने वाला देखता है तो इसके कदमों को उछाड़ता है, उसके दिल को बोझल कर देता है, उसका दिल उस नेकी से उछाड़ देता है और उसको अपनी इताअत में लगा देता है, हत्ता कि शैतान के कहने पर वो शख्स उस नेकी को छोड़ देता है, यानी उसको करने ही नहीं देता। वो कहता है, ये क्या तुम काम कर रहे हो। इसके बरक्स अगर किसी बंदे को पेशकदमी करने वाला, नेकियों में बढ़ चढ़ के आगे जाने वाला देखे तो क्या कहता है? कहता है, ये तेरे लिए काम थोड़ी है, तू तो इससे बहुत ज्यादा स्किल्ड है, तेरे में तो इससे बहुत खूबी है, तू ये क्या करेगा, कुछ और कर, कुछ और कर। और इस तरह उसको कुछ और कह करवा कर उसको उस नेकी से दूर करके, किसी बड़े काम का लालच देकर उस नेकी से दूर कर देता है। खुलासा क्या निकला? शैतान के दो वार हैं, एक है वसवसा, कोताही का, सुस्ती का, लेजी बन जाओ, सुस्त हो जाओ, और दूसरा क्या है? हद से बढ़ने का। इस आयत में जिस शख्स का हमने किरदार देखा है वो कौन सा है? कि जो नेकी के मामले में सुस्ती करता है। टाइम वेस्टर्स में एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर सुस्ती है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि सुस्त लोग अपनी जिंदगी से कुछ नहीं हासिल कर पाते। क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी काम के करने का इरादा किया हो, प्लानिंग भी कर ली, थोड़ी बहुत देर बाद हो गई, लेकिन इसके बाद एन वक्त पे आप लेजी हो जाए, नहीं मैं नहीं करती, दूसरे कर ले, मैं नहीं कर सकती। कहते हैं एक कंपनी थी, उन्होंने एक नाम रजिस्टर करवाना था, उन्होंने थोड़ी सुस्ती की, दूसरों ने वही नाम रजिस्टर करवाया, करोड़ों कमा लिए। बजाहर लगता है दूसरों ने उन पर ज्यादती की है, लेकिन असल में हुआ क्या, पहलों को उनकी सुस्ती की सजा मिली। तो आज का पूरा दिन, कल तक हमने अपनी सुस्ती और काहली की आदत को देखना है। नेकियों को टालने की आदत, नमाज को टाल के पढ़ने की आदत, याद रखिए हमारी जिंदगी की बरकत खत्म हो जाती है। रिश्ते नातों को निभाने में, लोगों से ताल्लुकात में हम जब सुस्त होते हैं, वक्त पे किसी के दुख सुख को नहीं समझते, तो बाद में उनके साथ हमारे मामलात बिगड़ जाते हैं। छोटी छोटी बातों में हमारे तसाखल है, और हमारे कल्चर में तो कहते हैं 5 मिनट में आई और आधे घंटे में आते हैं, 2 मिनट रुको, नहीं आप झूठ कह रहे हैं, कम से कम मुझे 20 मिनट रुकना पड़ेगा। नतीजा क्या होता है? बेतवज्जुगी। आज आप अपने मुल्क में देखिए, कोई काम वक्त पे नहीं होता, ऑफिसेज में जाके खड़े हो जाए, लाइनों में खड़े हो जाए, हर बात के बहाने। तो सवाल पैदा होता है कि हम सुस्त क्यों हैं, हम काहिल क्यों हैं? इसलिए कि हमारी जिंदगी की तरजीहात नहीं है, हमारे पास कोई वक्त की कैद नहीं है। मैं अपने ऊपर लेके बताती हूँ, दौरे कुरान में मैं जितनी तेज बोलती हूँ, आप में से जो लोग दूसरे लेक्चर सुनते हैं या सबीलुल जन्ना या तफसीर, वो वाजे फर्क महसूस करते होंगे। क्यों? कि मैं अपने बोलने की स्पीड चेक करके आती हूँ कि इस स्पीड से तर्जमा पढ़ूंगी तो इतनी देर में पारा पूरा होगा। इसके बावजूद भी पूरा कभी कभी नहीं होता, क्योंकि मेरे पास एक गोल होता है। और अगर आज मैं कहती नहीं, मैंने कोई भी नहीं आज का गोल पूरा करना, तो मैं हो सकता है अभी तक 5वें पारे के शुरू पे भी ना होती। तो गोल मुकर्रर करें, लिखें। आप अगर सुस्त हैं, सुबह उठते ही अपने पूरे दिन के कामों को लिखिए और उसका फिर एक हदफ बनाएं, और नोट करें कि अगर मैंने आज के दिन को जाया कर दिया तो ये कल मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। और आप कह लीजिए कि ये एक आपको अपने नफ्स के खिलाफ जाने वाली बात करनी पड़ेगी। फिर इसी तरह लॉन्ग टर्म भी प्लानिंग करें, छोटे काम बड़े काम, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, प्लानिंग से फायदा होगा। फिर तीसरी चीज़ ये कि अपना एहतसाब करें, हर दिन रात को सोने से पहले चेक करें कि आज के दिन में कौन से काम मैंने वक्त पे किए, खाना वक्त पे पका, कपड़े सही टाइम पे धुले, शौहर के आने से पहले सब रेडी था, कहीं जाना था तो वक्त पे घर से निकली, शावर में मैंने कितनी देर लगाई। इस तरह आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों में आप अपने ऊपर नजर रखेंगे तो उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें हम अलग रखेंगे। फिर इसी तरह से एक्शन प्लान बनाएं, काम करना कैसे है, ये खाना इतनी देर में पकना है तो इसको कैसे पकाऊं, ये पहले कर लिया वो बाद में कर लिया तो फिर कैसे करना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस वक्त हमने अपनी सुस्ती दूर करने के लिए सब कुछ कर लिया तो हमारी जिंदगी में कितना तवाजुन आएगा। तवातुर रखें, तसलसल रखें, जो काम करें उसको मुस्तकिल करें। बाज लोग शुरू में काम बड़े शौक से करते हैं, 2 दिन बाद शौक पूरा ठंडे, जितने ख्वाब जितने इरादे सब मट्टी में मिल जाते हैं हमारे, हम कहते शौक ही पूरा हो गया। बच्चे को खिलौना दे, 1-2 दिन खेलेगा उसके बाद सो जाएगा, नहीं ना। इसी तरह कुछ लोग शुरू में बहुत उछलते हैं, खरगोश की तरह छलांगे लगाते हैं, कुछ मुस्तकिल लगे रहते हैं। तो याद रखिए, मेरे आपके अंदर से अगर सुस्ती और तसाखुर और डिलेइंग प्रैक्टिस नहीं निकलेगी तो हमारी नेकियां दूसरे ले जाएंगे। कोई कंपनी कह लीजिए कि उस शख्स को पसंद नहीं करती जो सुस्त हो, कोई ऐसा नहीं है। फिर एक और काम कीजिए अपनी सुस्ती दूर करने के लिए, कि हकीकत पसंद बने, रियलिस्टिक अप्रोच कीजिए, अपने अपने कामों को देखिए, अपने लिए क्या चीज़ बेहतर है। हर चीज़ को आप लेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा, और उसके बाद आप ये कि डेडलाइन रखें, ये सबसे ज्यादा फायदा देती है मुझे चीज़। डेडलाइन ना रखो कोई काम पूरा नहीं होता, अधूरे काम पूरे कीजिए, पहले घर में जाकर देखिए क्या आधे आधे काम है उनको पूरा करके खत्म कीजिए। क्या चीज़ें आपने डिले की, कई दिन से कपड़े रखे हैं इनको इस्त्री करना है नहीं कर रहे, कई दिन से अलमारियां साफ करनी है नहीं कर रही, तो सुस्ती के जो मामले हैं उसको दूर करें। फिर एक और छोटी सी बात है कि जो बीच के छोटे छोटे चंक्स होते हैं ना वक्फे और इंतजार के लम्हात, उनको इस्तेमाल करें। किसी ने कहा मैं आती हूँ, आप इंतजार कर रहे हैं, बाहर खड़े हैं, कोई नहीं आ रहा, आप उतनी देर में कोई छोटा सा काम कर ले, खुद साइड प्लान ढूंढा करें कि इस वक्त में मैं क्या कर सकती हूँ। रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई है, अब आपको लग रहा है कि यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हुआ है, आप उस दौरान में भी कोई दुआ पढ़ लें, कोई सुन लें, कोई मैसेज चेक करना है वो कर लीजिए, एक सुई पैदा करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सुस्ती खत्म होगी। और आखिरी बात है कि फुर्सत तो मरने के बाद ही मिलेगी, कब्र में होंगे तो हमें कोई किसी काम का नहीं कहेगा। कभी अपने फराइज को पीछे ना डालें, अपने अजाइम को बुलंद रखें, नाकामी और अंधेरों से कभी ना घबराएं, सितारे अंधेरों में चमकते हैं, आप वो चमकता हुआ सितारा बन जाइए कि जो हकीकत में आपको दुनिया के इस आसमान पे भी चमकता हुआ दिखाए और कल जन्नत में भी आप अपनी चीजों से पहुंचे। हमेशा ये काकरे में कोशिश करूंगी, मुश्किल से घबराया ना करें, जो चीज आप और मैं सोचते हैं वही होती है, जो हम पहले से सोच लेते हैं वो हमसे कभी नहीं होती। फिर चैलेंजेस का मुकाबला करना सीखें, नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए सुने। एक मुहावरा है कि सूरज डूब रहा था, कहने लगा कोई है जो मेरी जगह लेगा, अब क्या होगा। एक दिया बैठा था वहां, कहने लगा मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। और सूरज जब मौजूद था तो वो दिया किसी को नजर भी नहीं आ रहा था, लेकिन जो ही सूरज पूरा डूब गया वो दिया जगमगाने लगा। तो मेरा आपका काम अंधेरों में रोशनियों का है। कोई किसान बीज डालकर फिर सो नहीं जाता, उसकी देखभाल करता है, कोशिश करता है, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी, और फिर मैं बच्चों की अपनी आदत के मुताबिक बात करूंगी, उनकी सुस्तियों को दूर करते हैं। आज देखा क्या गया कि बड़े माशाल्लाह फिर भी चाको चौबंदर, बच्चे सुस्त हैं। बूढ़ा बाप घर का काम ज्यादा बाहर का कर लेता है, बच्चे से कम करते हैं। बूढ़ी माँ कई काम करके भी फारिग हो जाती है, जवान बच्चियां काम नहीं कर रही होती। इस चीजों को लेकर चलिए और साथ दूसरों को लगाएं, अपने साथ कामों को चलाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमसे इस जिंदगी में बेहतरीन काम लें। हजरत उमर पे बात करूं तो आप देखिए, अगर उमर सुस्त होते तो क्या होता। उमर रजी अल्लाह अन्हो ने ऐसे लगता है कि जैसे मांग मांग के अल्लाह ताला से काम लिए थे, और अल्लाह ताला ने फिर उनको वो बेहतरीन काम दिए कि जिसके बाद आज तक हम उनके नाम को देख रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए भी कुछ ऐसे ही मामलात कर दे।